लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक का।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। उपहास करने वाले नगर में उत्तेजना पैदा करते हैं, किंतु ज्ञानी क्रोध को शांत करते हैं। यदि ज्ञानी मूर्ख पर मुकदमा चलाता तो वह क्रुद्ध हो या प्रसन्न, उसे शांति नहीं मिलेगी। हत्यारे निष्कपट व्यक्ति से वैर करते हैं, किंतु धर्मी उसके जीवन की रक्षा करते हैं। मूर्ख चिंता कर अपना क्रोध अभिव्यक्त करता, किंतु बुद्धिमान उसे वश में रखकर शांत करता है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 29वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में लेखक उपहास करने वाले, तिरस्कार करने वाले और अन्यों के कामों की हंसी उड़ाने वाले को समाज के लिए खतरनाक निरूपित करता है। उसका कहना है कि जब ऐसे लोगों को देश के प्रशासन में लगाया जाता है तो वे अवैध और अनुचित काम करते हैं, क्योंकि वे विचार विमर्श करने से कतराते हैं, वे कानून द्वारा बाधित होने से कतराते हैं, वे अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहते, वे लोगों को भड़काते अपने बुरे आचरण से एक शहर और समाज में मानो आग लगा देते हैं, वे नागरिकों के बीच कलह फैलाते और उन्हें भ्रमित कर डालते हैं, वे धर्म विवेक के दायित्वों सबका मजाक उड़ाते हैं, उन चीजों का भी जो पवित्र और गंभीर हैं। ऐसे लोग अपनी पीढ़ी के लिए विपत्तियां उत्पन्न करते हैं, जबकि ज्ञानी क्रोध को शांत करते, वे सच्चे ज्ञान को बढ़ावा देते और विवेकपूर्ण सलाह से संघर्षरत दलों में सामंजस्य स्थापित कर विभाजन के बुरे परिणामों को रोक डालते हैं। श्रोताओ, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ जब विवाद करता है तो वह आशा कर सकता है कि उसकी बात समझी जाएगी, क्योंकि उसके पास तर्क और न्याय होता है। वह अपनी बात द्वारा विवाद को समाप्त करने में सक्षम होता है और सौहार्दपूर्ण ढंग से समस्याओं को सुलझा भी देता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति व्यर्थ बकवाद करता है और इसीलिए उसे शांति नहीं मिलती, उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती, जिसके कारण वह अनवरत बेचैन रहता है। फिर यदि मूर्ख व्यक्ति क्रोधवश लड़े या हंसी से किसी से कही गई बात को गाली दे या मजाक मिले, उसे गलत तरीके से लिया जाएगा। इसलिए बुद्धिमान यह समझ लेता है कि अगर वह मूर्ख से लड़ेगा तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं से चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, अन्यों के प्रति उसका व्यवहार विनम्र होता है, मधुर होता है। इसीलिए श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, मूर्ख चिंता कर अपना क्रोध अभिव्यक्त करता, किंतु बुद्धिमान उसे वश में रखकर शांत करता है। श्रोताओं, प्रज्ञावान अथवा बुद्धिमान व्यक्ति भले हैं, वे सबका भला चाहते हैं, मूर्ख का भी, इसीलिए शांत रहकर उसे सीधे रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
आगे 29वें अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, यदि शासक झूठी बातों पर ध्यान देता तो उसके सभी पदाधिकारी दुष्ट बन जाते हैं। दरिद्र कपटी में यही समानता है कि प्रभु ने दोनों को आंखों की ज्योति प्रदान की है। यदि राजा दरिद्रों को न्याय दिलाता तो उसका सिंहासन सदैव सुदृढ़ रहता है। श्रोताओ, यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर शासकों में, झूठ सुनना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ऐसा कर वे न केवल स्वयं व्यक्तियों और चीजों के बारे में गलत निर्णय ले लेते हैं, बल्कि वे दूसरों को भी गलत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। झूठ वे ही बोलते हैं जो झूठे की बातें सुनते हैं। जो शासक ऐसा करते हैं उनके सेवक भी उन्हीं की तरह दुष्ट होंगे। उक्त पद में लेखक उन शासकों और पदाधिकारियों को चेतावनी देते हैं जो सरलता से झूठ सुनने को तैयार हो जाते हैं। वे उन लोगों की शिकायतें सुनने को उत्सुक रहते हैं जो अन्यों की बदनामी करते हैं, अन्यों की बुराई करते हैं। अन्यों के बारे में बुरा सुनना उन्हें अच्छा लगता है, फिर भले ही मिली सूचना गलत ही क्यों न हो। वे खुद झूठ और बुराई को सुनने में मजा लेते हैं और इसीलिए अपने सेवकों को भी इस अपराध में शामिल कर लेते हैं। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, यदि शासक झूठी बातों पर ध्यान देता तो उसके सभी पदाधिकारी भी दुष्ट बन जाते हैं। आगे कहता है कि दरिद्र और कपटी में यही समानता है कि प्रभु ने दोनों को आंखों की ज्योति प्रदान की है। सच्ची तो है, प्रभु ने सब मनुष्यों को एक समान बनाया, उन्हें अपने प्रतिरूप में बनाया। इसलिए जिस प्रकार भले लोग आंखों से देख सकते हैं, उसी प्रकार बुरे भी देखने में सक्षम हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि प्रभु ईश्वर ने कितनी बुद्धिमानी से दुनिया में बहुत अलग अलग स्वभाव, क्षमता और परिस्थितियों वाले लोगों के द्वारा अपने विधान की योजना को पूरा किया। यहां तक कि उन लोगों के द्वारा भी जो एक दूसरे के विपरीत हैं, कुछ गरीब हैं और उधार लेने के लिए मजबूर हैं, अन्य अमीर हैं, उनके पास अधर्म का बहुत सारा धन है। इसी प्रकार कुछ लोग ऋणदाता और सूदखोर हैं, तो अन्य हाशिए पर जीने को मजबूर हैं, कुछ गरीब हैं, ईमानदार और मेहनती हैं, अन्य अमीर हैं लेकिन आलसी और धोखेबाज हैं। फिर भी ईश्वर चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर, दोनों की आंखों को रोशन करते हैं। वह अपने सूर्य को दोनों पर चमकाते हैं और उन्हें इस जीवन के सभी सुख प्रदान करते हैं। ईश्वर अमीर हो या गरीब, दोनों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सवाल यह है कि ईश्वर की इस देन का व्यक्ति किस प्रकार उपयोग करते हैं। श्रोताओ, हम गरीबों और अमीरों में अंतर देखते हैं। हालांकि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य का सृजन अपनी महिमा और सौंदर्य दिखाने के लिए किया, जैसा कि अय्यूब के ग्रंथ के 12वें अध्याय के 16वें और 17वें पदों में हम पढ़ते हैं, सामर्थ्य और विजय उसी की है, धोखा खाने वाला और धोखा देने वाला दोनों उसी के अधीन हैं। वह परामर्शदाताओं को विवेकहीन और न्यायाधीशों को मूर्ख बना देता है। फिर 29वें अध्याय के 14वें पद में लेखक कहता है, यदि राजा दरिद्रों को न्याय दिलाता तो उसका सिंहासन सदैव सुदृढ़ रहता है। श्रोताओ, मजिस्ट्रेटों या न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे मनुष्य मनुष्य के बीच कोई अंतर न करें, बल्कि ईमानदारी के साथ न्याय करें और उनके सामने लाए गए सभी मामलों को सच्चाई और निष्पक्षता के अनुसार तय करें। खासकर उन गरीबों की तरफदारी करें जिनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। अमीर का पक्ष लेकर गरीब के साथ अन्याय कदापि न करें, जैसा कि निर्गमन ग्रंथ के 23वें अध्याय के 3रे पद में आदेश दिया गया है। लिखा है, तुम किसी गरीब के अभियोग में पक्षपात नहीं करोगे। गरीब इंसान सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह गरीब है, और अमीर इसलिए न्याय मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास ढेर सारा धन है और रिश्वत देकर या भ्रष्टाचार द्वारा किसी को भी वह खरीद सकता है। इसके विपरीत जो न्यायाधीश अपना कर्तव्य निभाते हैं उनकी खुशी बनी रहेगी, उनके पद का सम्मान किया जाएगा, उनका न्याय अचल होगा और सदा के लिए स्थापित रहेगा। उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी जिससे उन्हें अपने परिवार को बनाए रखने में मदद मिलेगी और सत्य एवं न्याय भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकेगा।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी। कल करती चंचल नदियां पेड़ पत्ते फूल कलियां, जल हो थल हो ऊंचा गगन हो पंछी पवन या बहता दरिया हो, तेरी सत्ता के सब है खिलौने, तेरी सत्ता के।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला के साथ वैटिकन के अपने निवास संत मार्था में एक निजी मुलाकात की। अपने शादी की 20वीं सालगिरह और राजा के पिता एडिनबर्ग के फिलिप की मृत्यु की 4 साल की सालगिरह के उपलक्ष्य में राजा चार्ल्स और रानी कैमिला ने बुधवार दोपहर को संत पापा फ्रांसिस से एक निजी मुलाकात की। यह मुलाकात वैटिकन के संत मार्था निवास में हुई, जहां संत पापा जेमेली अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद स्वास्थ्य लाभ हेतु आराम कर रहे हैं। बुधवार की शाम एक वैटिकन प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, संत पापा फ्रांसिस ने राजा चार्ल्स और रानी कैमिला से एक व्यक्तिगत भेंट की। इस भेंट में संत पापा ने राजा और रानी दोनों को उनके विवाह की सालगिरह पर शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने संत पापा को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामनाएं अर्पित की। संत पापा के संग राजा और रानी की मुलाकात की घोषणा मार्च के शुरू में बर्मिंघम पैलेस में एक आधिकारिक बैठक के दौरान जयंती के उपलक्ष्य में इटली यात्रा के संदर्भ में की गई थी। प्रारंभिक घोषणा में यह कहा गया था कि शाही परिवार इटली की अपनी यात्रा के प्रथम चरण में वैटिकन में संत पापा के साथ अपनी मुलाकात करेंगे। बाद में 24 मार्च को एक नई घोषणा में यह कहा गया कि राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला संत पापा से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ हेतु आराम की जरूरत है। रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ब्रिटिश शाही परिवार ने इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तेरेला और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। बुधवार को राजा ने मेंते चित्तिरियो में संसद भवन के सदस्यों को संबोधित किया और वे ऐसा करने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट भी बन गए। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार की प्रातः डोमिनिकन गणराज्य के सांतो डोमिंगी के नाइट क्लब में एक छत गिरने में मारे गए 180 लोगों के लिए प्रार्थना अर्पित की। संत पापा के नाम सांतो डोमिंगो के महाधर्माध्यक्ष फ्रांसिस्को ओजोरिया ओकोस्टा को सांत्वना तार संदेश प्रेषित करते हुए वैटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने लिखा कि संत पापा फ्रांसिस सांतो डोमिंगो के नाइट क्लब में हुई घटना से दुखित हैं, जिसमें कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए हैं। संत पापा ने रात्रि क्लब में छत ढहने के कारण मारे गए घायल लोगों के नाम अपने तार संदेश में परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए प्रार्थना करते हुए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं डोमिनिकन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव धर्माध्यक्ष फाउस्टिनो बुर्गोस ने इस घटना के शिकार लोगों के लिए ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए मृत लोगों की आत्मा शांति हेतु प्रार्थना की। हम इस मिस बलिदान में मृतकों की आत्मा शांति हेतु प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को अपने राज्य में स्वागत करें, घायलों को और उनके परिवारों को अपनी शक्ति प्रदान करें ताकि वे जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। संत पापा फ्रांसिस ने इटली के गेस्तोरो पितिलियानो सोवाना और ओर्बेतेल्लो धर्म प्रांत से रोम की तीर्थ यात्रा कर रहे विश्वासियों के नाम अपने संदेश प्रेषित किए। संत पापा ने इटली के तीर्थ यात्रियों को कहा कि मैं आपके नए धर्माध्यक्ष बेर्नार्डिनो जोर्दानो का भी अभिवादन करता हूं, जो आपके संग जयंती की यात्रा में सहभागी हो रहे हैं। पवित्र द्वार से होकर गुजरने वाले हर विश्वासी के विश्वास का नवनीकरण हो, संत पापा ने कहा, ताकि हम चरवाहे और झुंड एक साथ चल सकें। संत पापा ने अपने संदेश में विशेष रूप से उन लोगों की याद करते हुए शुभकामनाएं अर्पित की जो बीमार और बुजुर्ग हैं। आइए हम इस परीक्षा की घड़ी में क्रूसित प्रभु यीशु के बारे में चिंतन करें, जो सांत्वना और मुक्ति के स्रोत हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया की कठिनाइयां जिन्हें हम देखते और अपने हृदय में महसूस करते हैं, हम विश्वास और प्रार्थना में दृढ़ रहते हुए उनका सामना कर सकें तथा प्रतिदिन उस आशा का साक्ष्य दें जो हमें पृथ्वी का नमक होने में मदद करती है। उधर म्यांमार मंडलीय प्रांत के धर्माध्यक्ष मार्को टीन विन ने भूकंप पीड़ितों के संग अपने सहचर्य और निकटता के भाव प्रकट करते हुए सप्ताह भर लोगों के संग सड़कों में सोकर बिताया। मंडली के धर्माध्यक्ष मार्को ने भूकंप प्रभावित लोगों के संग अपनी एकात्मकता के भाव प्रकट करते हुए गुलाबी मच्छरदानी के नीचे उत्तरी म्यांमार के पवित्र हृदय गिरजाघर परिसर में सड़कों में सप्ताह भर सोकर अपनी रेवड़ का साथ दिया। महाधर्म प्रांत के उप धर्माध्यक्ष मान्यवर क्यू मांग ने फिदेस समाचार को बतलाया, यह भूकंप की स्थिति एक गहन अंतरधार्मिक संवाद के लिए भी अवसर उत्पन्न करती है, क्योंकि अपने प्रांत में हम बौद्धिक धर्मावलंबियों को बहुतायत में पाते हैं। उधर रोम के पॉन्टिफिकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में कलिसियाई इतिहास और सांस्कृतिक विरासत संकाय की प्राध्यापिका एल्वीरा कज़ानो को वैटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने परम धर्मपीठ स्मारकों के संरक्षण हेतु आयोग के नई अध्यक्षिका स्वरूप नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 10 अप्रैल को कार्डिनल पियत्रो पारोलिन के द्वारा हुई। परम धर्मपीठ फिदेस एजेंसी के एक रिपोर्ट अनुसार मानव तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए धार्मिक विष का उपयोग कर रहे हैं। यह रणनीति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में तस्करों द्वारा अपनाई जा रही है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।